भगवद गीता यथारूप के अध्याय दो का श्लोक क्रमांक 59 को देखेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। पहले हम तात्पर्य को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। अद्भुत है ये बात, पहली लाइन ही बहुत अद्भुत है, क्योंकि हम लोग हमेशा सुख चाहते हैं हर क्षण। तो यदि हमको आध्यात्मिक जीवन से सुख नहीं मिल रहा तो भौतिक सुख जीवन को त्यागना असंभव है। कुछ समय के लिए हम अपने आप को रोक जरूर सकते हैं, लेकिन जैसे कछुआ थोड़ी देर के लिए अपनी इंद्रियों को अंदर कर सकता है, लेकिन हमेशा थोड़ा इंद्रियों को अंदर रखेगा। मान लीजिए वो खतरे के ही वातावरण में रहे तो कब तक रहेगा अंदर, कभी ना कभी तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। कुछ भोग, भोग का मतलब कुछ खाने के लिए। तो हम पहले से पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। जैसे डायबिटीज के रोगियों को पूछ सकते हैं, चावल आलू मीठा मत खाइए। और क्योंकि मेरे घर में माता पिता को दोनों को ही डायबिटीज है तो मैंने देखा है आज थोड़ा सा खा लेते हैं, अब क्या कब तक मन को मारेंगे, हो सकता है इसकी वजह से शरीर छूट जाए। लेकिन देख सकते हैं कि कितनी इंद्रियां बलवान होती हैं। इसके पीछे एक और चीज़ आप देखिए, क्योंकि बचपन से मीठा आलू चावल खाने का अभ्यास है तो अब जब बुढ़ापे में छोड़ना के लिए जबरदस्ती छोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। मान लीजिए बचपन से मीठा आलू चावल ना खाया हो, बाद में डायबिटीज होगी नहीं पहली बात, और अगर हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हमें सीखना चाहिए कि जो इंद्रिय तर्पण यानी इंद्रिय भोग की जो आदतें हैं उसको जितना जल्दी हम संयमित कर लेंगे उतना ही हमारे लिए आगे बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक जीवन के लिए और भौतिक जीवन के लिए भी। खैर इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्र संयम के लिए अष्टांग योगी जैसी विधि की स्तुति की जाती है जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। पहले श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से ही कुछ चर्चा करेंगे। एक तो ये कि जितने भी नियम हैं जैसे 16 माला का जप करना, कहेंगे 16 माला के ही क्यों, जो हमारी परफेक्शन स्टेज है उसमें आप कहेंगे 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, तो अब हम स्थिति में नहीं है, हम तो कह रहे हैं 16 क्यों, 4 क्यों नहीं। तो ये हमारी बीमारी है, इसलिए बताया जाता है एक आचार्य के द्वारा प्रभुपाद जी के द्वारा कि आप कम से कम 16 माला कीजिए, और ये करते करते हमारी हरिनाम में रुचि हो जाएगी और भोगों में विरक्ति हो जाएगी। ये नाम का अपना सहज प्रभाव होता है। इस चीज़ को मुझे बार बार स्मरण होता है क्योंकि आज जब मैं प्रसाद दे रहा था तो हमारे इसमें प्रसाद में समर राइस की खीर थी और समर राइस की खिचड़ी थी और दोनों एक जैसे लग रहे थे, और एक भक्त ने मुझे थोड़ी सी खीर एक खिचड़ी के ही बीच में डाल के दी, तो मैंने जो कौर लिया तो मैं सोच रहा था कि मैं खीर खा रहा हूँ और मेरे मुँह में खीर गई। मैं सोच रहा था मैं खिचड़ी खा रहा हूँ तो मुझे नमकीन लगनी चाहिए, लेकिन खीर अपना प्रभाव दिखाती ही है। कितना इंटरेस्टिंग है, मेरा मन में प्रोग्रामिंग ये थी कि मैं नमकीन खा रहा हूँ और जैसे मैंने खाया तो उसने मीठा अपना असर दिखाना चालू किया। तो उसी प्रकार से नाम जब हम करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि कि इन भोगों से हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है। जो इंद्रिय विषयों के भोग हैं उससे हमें सुख नहीं मिल रहा, या अगर सुख मिल भी रहा है तो क्षणिक है और वो हमें कोई संतुष्टि नहीं दे रहा। ये चीज़ आप महसूस कर पाएंगे। जैसे एक भक्त से मैं चर्चा कर रहा था, उन्हें बोला प्रभु जी आप दिन में सोते हैं? मैंने कहा हाँ। पहले मैंने पूछा कि आप सुबह उठते क्यों नहीं हैं? तो उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले पूछा कि प्रभु जी आप दिन में सोते हैं क्या? मैंने कहा हम सोते हैं। तो कहते हैं हमें सोने को नहीं मिलता है इसलिए हम सुबह सो लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है प्रभु जी आप संडे को तो उठिए। कहते नहीं, हमने कहा संडे को तो आप दिन में सो सकते हैं, फिर क्यों नहीं उठते? तो आप देख रहे हैं कि मन किस प्रकार से, हमारी इंद्रिया किस प्रकार से भावना करती हैं। अब कारण क्या है? क्योंकि सुबह सोना अच्छा लगता है, ये रजोगुण का कार्य है, कारण तमोगुण के कारण ऐसा लगता है। लेकिन सुबह एक बार आप उठ जाइए फिर कितना अच्छा लगता है, भले उठना शुरुआत में खराब लगता है, ये सत्वगुण का कार्य है। तो जब बार बार आप सुन करके, ट्रेनिंग देख करके अपने मन को सुबह उठाएंगे, फिर आपको सुबह उठना बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। तो यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं नव दीक्षितों के लिए, हमारे स्नेह लोगों के लिए। मंगल आरती में अटेंडेंस लगेगी, अरे लेट हो जाऊंगा, अटेंडेंस लगेगी तो इसके लिए जाता है। और जब करते 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 फिर उसको, अरे भगवान का दर्शन बड़ा सुंदर होता है, कीर्तन बड़ा सुंदर होता है, फिर वो नहीं जा पाने के लिए उसको मतलब बाध्य हो जाता, असमर्थ हो जाता है, ऐसे कहना चाहिए, नहीं जा पाने के लिए असमर्थ हो जाता है। इसे कहते हैं राग, उसको आसक्ति हो जाती है। ठीक है, तो यही बात वहाँ पर बताई जा रही है कि शुरुआत में हमको जो इंद्रिय तर्पण से हम अपने आप को रोकते हैं। इसे मैं बोल रहा हूँ कि टीवी का कनेक्शन कटवा दीजिए, कष्ट लग रहा होगा, कुछ लोग शायद मेरी बात मान लें या ना माने, आपकी इच्छा। तो जब काटेंगे कनेक्शन या देखना बंद कर देंगे तो इच्छा रहेंगी देखने की, लेकिन जब आपको भगवद्गीता और भागवतम का रुचि मिल जाएगी तो फिर आप उन सब चीज़ों को बिल्कुल कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, वही आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई ज़्यादा अगर बुद्धि भी अगर लगा रहे हैं तो बुद्धि का वो जो दायरा है वो क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, उसी का एनालिसिस करते रहें। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप लोग महसूस करते होंगे जो आपके भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं जो आपसे आके बात करते हैं, वो बातें बड़ी खट्टी लगती हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कितना भगवद्गीता पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग भी गीता के भगवद्गीता या भागवतम या कथा के रस का आस्वादन करते हैं वो महसूस कर सकते हैं कि भौतिक वार्ताएँ बिल्कुल बोरिंग लगती हैं। क्या वही बातें लेकर किसी को क्या पता होने वाला उसे? तो खैर, तो ये हम भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि भोग के विचारों को हम नहीं त्याग पाते हैं शुरुआत में, भोग के प्रति रुचि रहती है, लेकिन अपनी इंद्रियों को सीमित करते रहना है और इससे हमारी चेतना शुद्ध होगी, भगवान की सेवा में लगाएंगे, और जब चेतना शुद्ध होने लगेगी तो फिर उसको भगवत सेवा में आध्यात्मिक सुख प्राप्त होने लगेगा और फिर अपने आप स्वाभाविक रूप से भौतिक भोगों की रुचि नहीं होगी। ये श्लोक का समराइजेशन था, अब हम थोड़ा उसकी गहराई में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। शब्द यहाँ पे आ रहा है निराहार, जिसे आज आप में से कुछ लोग जो एकादशी कर रहे हैं वो निराहार होंगे या एटलीस्ट अन्न को ग्रहण नहीं कर रहे होंगे। तो प्रायः भक्त लोग 1 बजे तक निराहार रहते हैं, 12 बजे तक रहते हैं, तो हम जैसे भक्तों को बहुत कष्ट होता है देखते ही रहते हैं 1 बज के कब एक बजेगा, जल्दी से 1 बजे प्रसाद हो जाए। कुछ वक्त सो जाते हैं, जो सो लेंगे 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, अरे वो जा करके हम 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, जो भी कर कैसे करके पार कर लेते हैं, या बहुत सेवा कर लेते हैं। मैं तो बहुत सेवा करने का प्रयास करता ताकि भूख भूल जाऊँ ऐसे करके लेकिन भूख की इच्छा बनी रहती है। तो अब देखिए कि अगर व्यक्ति बहुत भूखा हो तो चिड़चिड़ा हो जाएगा ना। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि एक बद्धात्मा के लिए इंद्रिय तृप्ति कैसी है, आहार की तरह। इंद्रिय तृप्ति चाहे आँख से हो चाहे वो कान से हो, हमें चाहिए ना, ऐसे तो नहीं बैठे रह सकते आँख बंद करके कान बंद करके कछुए की तरह, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब हमको अगर हमने इस अपने भोग के जो विषय हैं वो त्याग दिए हैं तो आपका मन मतलब एक रिप्रेस्ड मतलब दबा हुआ सा मन महसूस नहीं करेगा, मुझे कुछ बोलना नहीं है क्या, मुझे कुछ सुनना नहीं है क्या, मुझे कुछ देखना नहीं है क्या, कब तक ऐसे चलेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? इसी बात को भगवान बोले निराहारस्य देहिना, ये देह है, इंद्रियां हैं, ये अपना संतुष्टि चाहती हैं, कुछ चाहिए, कुछ सुनने के लिए चाहिए, कुछ देखने के लिए चाहिए, कुछ करने के लिए, बोलने के लिए चाहिए। दिक्कत इसमें क्या है, इंग्लिश में वो प्रभु जी बता रहे थे, व्हेन वी मिस्टेक द इररेजिस्टिबल टू बी व्हेन वी मिस्टेक द इररेजिस्टिबल विद द एसेंशियल, मतलब जिन चीज़ों को करने का हमारे मन में बहुत आग्रह आ रहा है, हम ये सोचने लगते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए आप तो शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग शराब पीते हैं वो सोचते हैं कि शराब की जो तलब है, शराब मुझे पीना बहुत ज़रूरी है। क्या शराब पीना ज़रूरी है? अभी मेरा कल इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कल मेरे ग्वालों से मीटिंग हुई और हम उनको डांट रहे थे कि आप लोग पान मसाला क्यों खाते हैं। तो बोला प्रभु जी सारे लोग नहीं खाते, कुछ चार पाँच खाते हैं। बोला पान मसाला के बिना हमें शक्ति नहीं आती। तो हमने कहा शक्ति नहीं आती तो बताओ उसमें कौन से विटामिन है। फिर वो हंसने लगे, नहीं विटामिन तो कुछ नहीं है। नहीं विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो शक्ति कैसे आती है? और जो ग्वाले पान मसाला नहीं खा रहे वो कैसे कार्य कर रहे हैं? यानी कि तलब समझते हैं, तलब इंद्रियों के आग्रह को हम अपने शरीर की आवश्यकता मानने लगते हैं और ये एक प्रकार की आदत है, या कह सकते हैं संस्कार मन में बन जाता है। जैसे आप लोग सब भक्त हैं, कोई मसाला नहीं खाता, मसाले खाने का विचार भी नहीं आता, बल्कि कोई इशू ही नहीं है कि मसाला मत खाओ। कभी बोला मैंने मसाला मत खाओ? कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे बोल भी दिया, बोलेंगे आप से तो मैं नहीं समझता किसी के दांत मसाला खाने वाले नहीं लगते, मसाला खाते मसाला से मतलब समझ रहे होंगे आप, ज़्यादा बता दी नहीं खाते। अब क्यों नहीं खाते आप बताइए? क्योंकि सतोगुण से प्रभावित है, भक्त हैं, जब करते हैं खराब भी है और आकर्षण भी नहीं। मान लीजिए आपको बोला जाए, कभी नहीं होगा सर कि आज प्रसादम है, आज एकादशी है, तो आपको अन्न की जगह भक्तों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए। तो कहेंगे ये क्या भाई आप, नहीं नहीं भाई हम तो नहीं आ रहे ऐसे प्रोग्राम में, पान पराग खिलाते हैं कैसे महाराज है, तो स्वामी जी है ना, नेचुरल होगा। कहें ठीक है आपकी कथा होता चलिए, ये पान पराग क्यों खिला रहे हैं? तो यानी कि देखिए, एक तो आप जान रहे हो कि खराब है और आपको कोई आसक्ति भी नहीं है, तो ये आप लोगों की चेतना का शुद्धिकरण का लक्षण है। जो पान पराग खाता है वो पूरी क्लास में सोचता रहेगा कब क्लास खत्म होगी, नीचे पान वाला आ रहा है, या अगर नीचे चिल्लाने लग जाए पान पान पान, तो उसके प्रति आकर्षित होने लग जाएगा। यानी कि मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, अपनी तलब को, तलब मतलब जो बहुत इंद्रियों की जिससे हमारा शरीर चले नहीं, उसके अलावा जो हमारी इच्छाएँ हैं उनको हम अपनी आवश्यकता मानने लगते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे टीवी देखने से आपका जीवन नहीं चलता, मैं टीवी के पीछे लग गया लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सोप ओपेरा आते हैं जिसको क्या कहते हैं, वो टीवी सीरियल होते हैं, उसको देख करके जीवन चलता नहीं है, ज्ञान नहीं मिलता आपको, लेकिन उसको देखने की तलब होने लगती है। देखिए जब मैं पान पराग के बारे में बोल रहा तब तो आप लोग हंस रहे थे और अभी आप लोग बड़े शांत हो गए, क्योंकि ये आप लोगों की बीमारी के बारे में बात हो रही है। तो अब ये तलब हर बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरी ऐसी कौन सी तलब है जिसका इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे क्या हम लोग जल के बिना, अन्न के बिना रह सकते? नहीं रह सकते। कोई बोलता है कि मुझे रोटी खाने की तलब लग रही है, ऐसा कोई वाक्य आपने कभी जीवन में नहीं सुना। हमें भूख लगती है, इससे हमको नरिशमेंट मिलता है, तो ये हमारी आवश्यकता है, तो इसको भगवान को समर्पित करके व्यक्ति खाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपने जीवन में खुद छांटिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है, और इससे आपकी भक्ति का उससे ह्रास होता है। अगर आपको नहीं आता है तो हम तो बता ही रहे हैं कि पहली चीज़ है टीवी से बचने का प्रयास कीजिए, और आजकल लोग एडवांस भी हैं तो फेसबुक, और इनका उपयोग अगर कृष्ण भावना के लिए कर सकें तो कुछ ठीक है, अदरवाइज बचना चाहिए। ये एक इसमें कारण और है ऐसा करने का, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा नियमित होता है वो इन तलबों को, तलब समझ रहे हैं जो इच्छाएं हैं, जो एक प्रकार से बस खाली इच्छा हो रही है, सब कोई लाभ नहीं दिख रहा, उनको वो नियमित नहीं कर सकता। लेकिन यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यदि हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं तो इनको हमें दबाना पड़ेगा ही, रोकना ही पड़ेगा। और दूसरा बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है यहाँ पे कि यदि हम शुरुआत में इस प्रकार की खुजली को, खुजली शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो किसी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए अप्लाई कर सकते, पिक्चर देखना, पान परा खाना या और भी शराब पीना, कुछ भी गलत कार्य आप सोच लीजिए, तो वे खुजली मात्र की तरह होते हैं। और खुजली से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि खुजली शुरुआत में बड़ी अच्छी लगती है और बाद में हम जब बहुत खुजलाते हैं तो वहीं पे वो घाव हो जाता है और फिर हमको और दवा लगानी पड़ती है और कष्ट झेलना पड़ता है। तो इसलिए प्रारंभ से ही अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। अब उससे होगा क्या, होगा ये कि आपका जो मन है, मन रूपी जो रूम है, वो गंदा होना बंद हो जाएगा। साथ साथ आप उसकी सफाई कर रहे हैं भगवत नाम, भगवत विषयों से, तो फिर अब आपकी चेतना शुद्ध हो रही है। अब होगा क्या, रजगुण और तमोगुण के प्रभाव आपके हृदय में कम होते चले जाएंगे। किसके प्रभाव, रजगुण और तमोगुण, और सतगुण बढ़ता जाएगा। और एक हम एक स्थिति आएगी जब हम द्विव्यवस्था में चले जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित करेंगे ही नहीं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, आप लोगों को शराब बिल्कुल पसंद नहीं, पसंद क्या है कोई मतलब ही नहीं, इस पर डिस्कशन करने का मतलब ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग भरतपुर में हैं जो शराब के ठेके चलवा रहे हैं, वहाँ पर जा करके पी रहे हैं, और उनको बोलो मट्ठा पीने के लिए तो नहीं। जैसे मुझे आज याद आ रहा है कि जब मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ, मैंने कभी शराब नहीं पिया, तो वहाँ RSC सूरतकाल में मेरे कुछ मित्र थे, बोले आज तो होना चाहिए। मैंने कहा भाई ठीक है, आप अगर वाकई मेरी सफलता से प्रसन्न हैं तो मैं आपको लस्सी पिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं शराब तो नहीं पिलवाऊँगा। मैं आपको बादाम खिलवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक गलत चीज़ तो नहीं करवाऊँगा। उस समय भक्त थोड़ी भक्ति में आ गया था। तो अमेजिंग बात है कि दूसरा व्यक्ति था, उसने भी इसका अनुमोदन किया, कहता हाँ बात तो सही है, इससे हम शराब क्यों मांगेंगे, ये तो खुद पीते भी नहीं है और हमें क्यों पिलाएंगे इस तरह से। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब वो व्यक्ति बोलता था कि इस प्रकार से जब नशा चढ़ता है, हमें हिट करता है, हमें होश नहीं रहता, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अब बताइए अगर आपके घर में कोई बेहोश हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा। हम बोले कि आपके घर में कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, जैसे कुछ दिन पहले भी रात में पार्थिव कृष्ण हो गए, तबियत खराब हो गया, तो मैं सो रहा था और एकदम से भक्त आ कहते वो पार्थिव कृष्ण बेहोश हो गए, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा ना कि कोई भक्त बेहोश हो गया, और जो शराबी के घर में सब बेहोश होते हैं तो अरे वो तो धुत हैं, बेहोश हो गए। तो कारण क्या है, गुणों का प्रभाव, जिस गुण से हम प्रभावित होंगे उसी के अनुसार उस स्थिति को हम आकर्षित होंगे, कह सकते हैं उससे विकर्षित होंगे, विकर्षित बोलेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्यक्ति को बुद्धिमान होकर के भक्तों का संग करके अपने जीवन में अध्यात्म का अनुशीलन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सतगुण बढ़े। इसीलिए हम सबको बोलते हैं सुबह उठना चाहिए, प्राय सब लोग उठते भी हैं, सुबह उठ के नाम जप करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। इससे आप देखेंगे जब वो बढ़ने लग जाएगा तो अपने आप आपको इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षण कम होने लगेगा। इसमें शब्द आ रहा है रसवर्जम रसोप्यस्य। रसवर्जम का मतलब है कि हमने भोग करना बंद कर दिया है, अपने इंद्रियों को नियमित करना शुरू कर दिया है, लेकिन रसोप्यस्य फिर भी उनके प्रति आकर्षण है। ये शुरुआत की स्टेजेस हैं, इसमें हमारा जो चित्त है वो रजगुण और तमगुण से भिन्न है। तो बोल रहे हैं इसमें भगवान परम दृष्टवा निवर्तते। अब देखिए दृष्टवा का अर्थ क्या होता है, संस्कृत किसको आती है यहाँ पे, देख कर। तो यहाँ पे बात आ रही है चखने की, टेस्ट करने की। तो दृष्टवा शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि हाँ दृष्टवा का मतलब है परसेप्शन, दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण किसके अनुसार होता है, हमारी चेतना के अनुसार। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शराबी के लिए बेहोश होना उसके दृष्टिकोण में बड़ा अच्छा है, नाली में पड़े रहना, और एक सभ्य व्यक्ति के लिए बहुत ही गर्हित है। तो अब दृष्टिकोण कैसे परिवर्तित होता है, चेतना के शुद्धिकरण के द्वारा। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं और साथ ही साथ इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इससे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। और उससे क्या होता है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये लास्ट सेक्शन है, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। आप लोगों का दृष्टिकोण में पॉजिटिव करने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए इस जगत में हम भौतिक सुख इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, जीभ के द्वारा, कान के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आध्यात्मिक सुख 2 प्रकार से अनुभव किया जाता है। आध्यात्मिक सुख इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है, मतलब इंद्रियां केवल द्वार रह जाती हैं, लेकिन उसका अनुभव आत्मा कर रही है, समझ रहे हैं। तो यानी कि भक्ति में ये जो नवधा भक्ति चलती रह सकती है, श्रवण कीर्तन, जिसमें हमें लग रहा है कि बाहर से इनपुट मिल रहा है, नाम जप कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो भक्तों को आनंद मिल रहा है। ये एक प्रकार की आत्मा का सुख है। और दूसरा आत्मा का सुख ये है जिसमें वो हृदय में ही भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव करके आनंद की प्राप्ति करता है। ये बहुत उच्चतर अवस्था है, लेकिन दोनों ही तरीकों से आत्मा को आनंद मिलता है। यानी इसको भगवान गीता में बताते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। यानी कि ये जो आध्यात्मिक सुख है ये इंद्रियों के परे है। जैसे आप में से जो लोग जप करते हैं, कभी कभी अनुभव होगा कि जप करने में एक विशिष्ट सुख प्राप्त होता है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कभी नहीं हुआ होगा। स्पेशली जो लोग सुबह उठ करके ध्यान पूर्वक करते हैं, तो भगवत कृपा से भगवान कभी कभी वो थोड़े से अमृत हमको दे देते हैं। अब यही चीज़ आगे जा करके रोज होने लगेगी, हर समय होने लगेगी, वो आगे की स्थिति है। तो अब बताइए, आप रोज हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं ना? रोज जप करते हैं, मैं भी रोज करता हूँ। तो हम जीभ से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो यदि केवल कान के द्वारा अनुभव होता तो हमको हमेशा उसमें सुख मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी चेतना एक पर्टिकुलर विशेष दिन के अनुसार अलग अलग गुणों से प्रभावित रहती है, इस कारण से हमें कभी कभी नाम जप करना बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी नहीं अच्छा लगता। ऐसा एक फिल्मी गाने के प्रति नहीं होता है। एक फिल्मी गाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्योंकि कान के माध्यम से है, कुछ दिनों तक ही अच्छा लगता है, लेकिन जितनी बार सुनते हैं उतनी बार अच्छा लगता है। ऐसा होता है कि वही गाना आपको आज दोपहर में अच्छा लगे, शाम को अच्छा नहीं लगे, ऐसा ही लगता है। हाँ, कुछ समय के बाद वो एकदम बोरिंग लगने लगता है। हरे कृष्ण मंत्र आपको शुरुआत की प्रारंभिक अवस्था में जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है तो सत्वगुणी चित्त होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। रजोगुणी होगा जब मन बहुत उद्वेलित है या तमोगुण में नींद आ रही है तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का अनुभव हम आत्मा के द्वारा करते हैं। ये चीज़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन इसको प्रयास करना चाहिए समझने का। ठीक है, मैंने सारा इसको समझाने का प्रयास कर दिया। एक लास्ट सेक्शन है और इस बात को बता रहे हैं कि प्रायः लोग सोचते हैं कि इंद्रिय निग्रह करने का मतलब है इंद्रियों को भूखा रखना, अपने आप को, अपनी इच्छाओं को मारना, अपने मन को मारना, और कुछ मात्रा में सही है। और वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो लोग होते हैं वो पागल हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोग विदेश में सोचते हैं कि जो लोग ब्रह्मचारी हैं वो बाद में जाकर पागल हो जाते हैं। ब्रह्मचारी शब्द तो नहीं इनको पता है, लेकिन कहते हैं जो शादी नहीं करता है या संग नहीं करता है वो व्यक्ति पागल हो जाता है, क्योंकि अपनी इंद्रियों को दबा रहा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। हम देख रहे हैं कितने महान महान संत हुए, वो ब्रह्मचारी रहे और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ गए। तो यानी कि अपनी इंद्रियों को हमेशा हम दबाए रखें, ये कुछ हद तक तकलीफ दे सकता है अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा का मौका नहीं। लेकिन ये तो सत्य बात है कि इंद्रिय भोग करने वाला कभी भी सुखी नहीं रहा। मतलब दोनों ही एक्सट्रीम सही नहीं है। अगर हम इंद्रिय भोग में लगे रहे पूरी तरह तो निश्चित रूप से दुख पाएंगे ही पाएंगे। इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं, केवल रोक के रखे हुए हैं और भगवत सेवा में नहीं लगाएंगे तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जैसा कि बहुत सारे मायावादियों की तरह होता है। वो कहते हैं कृष्ण तो माया है, उनकी सेवा करके क्या होगा, और फिर बाद में वो हॉस्पिटल खोल लेते हैं, वो सुखी नहीं रहते। तो इसलिए व्यक्ति को भगवान क्या बता रहे हैं पूरा समराइज हम करने का प्रयास करेंगे। इंद्रियों को विषय भोगों से रोकना और साथ साथ लगातार भगवान की सेवा में लगाए रखना ये तरीका है, और इसके द्वारा हमें भगवत सेवा का सुख मिलने लग जाएगा। यानी ये जो और जो हमारा कह सकते हैं स्ट्रगल पीरियड है उसमें हमें ये करना है, उसके बाद आपको वो सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, मैंने सुना था जब वो स्पेशली स्वस्थ थे, वो 2 बजे उठ करके भागवत पढ़ना चालू करते थे, उठते ही भागवत पढ़ते थे। जैसे होता ना बच्चे उठते ही दूध पिला दिया जाता है, ऐसे करके उनकी आसक्ति थी। ये प्रभुपाद जी कितने भी रात में देर में सोएं 1 बजे उठ करके ग्रंथों को उनका ट्रांसलेशन करते थे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे क्वालिटी का मतलब, जैसे मैं इन ग्रंथों का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ क्योंकि इनको किए बिना मैं रह नहीं सकता। तो अब ये स्थिति जब आ जाती है तो प्रभुपाद जैसे भक्तों को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए, कि आप टीवी मत देखिए, उनके कोई इसमें रुचि ही नहीं रह जाए। तो वो स्थिति तब आएगी जब हम इस अवस्था को क्रॉस करें जिसमें हमारा मन भोगों के प्रति आसक्त है, मन को हम नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, साथ साथ ट्रेनिंग देते हैं अपने मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में जुटाने की। सर स्टॉप करते हैं।